थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर दुआ का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो, तेरा घर खुदा का घर हो। इज्जत
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो हमारे बीच पहली बार इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने होशे नबी की पुस्तक के प्रस्तावना को देखा और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और होशे नबी की पुस्तक उसके एक अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम होशे नबी की पुस्तक और उसके एक अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम होशे नबी के जीवन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो आप हमें देना चाहते हैं, सुनकर समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के छल प्रपंच से हमारे श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें। आज अपने जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। होशे की भविष्यवाणी के अध्ययन में हम बाइबल की एक महान पुस्तक और एक असाधारण भविष्यद्वक्ता को देखते हैं। जी हाँ, भविष्यद्वक्ता को हम बड़ा कहें या छोटा, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता एक असाधारण मनुष्य था। अब क्या आप एलिय्याह को छोटा भविष्यद्वक्ता कहेंगे, क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को संग्रह नहीं किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक अंतिम भविष्यद्वक्ता था और उसने भविष्यवाणी की पुस्तक नहीं लिखी, परंतु वह परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था जिसने प्रभु यीशु मसीह के आने की घोषणा की थी। इब्रानी भाषा की बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं को बड़ा और छोटा कहकर अलग अलग नहीं किया गया है, जो उसकी मूल बाइबल है या मूल भाषा में है। यदि मुझे उनको क्रम में रखने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं प्रत्येक भविष्यद्वक्ता को उससे संबंधित ऐतिहासिक पुस्तक के साथ रखता। आपने देखा होगा कि प्रत्येक भविष्यवाणी की पुस्तक विभाजित राज्य के समय की है। जब जब राजा पद भ्रष्ट हुए तब तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को उठाया कि वे राष्ट्र को संदेश दें। अतः समय के अनुसार होशे की भविष्यवाणी यर्मिया से पहले की है। होशे, यशाया और मीका तथा उत्तरी राज्य में अपने देश भाई आमोस के साथ का था। यशाया और मीका दक्षिणी राज्य यहूदा के भविष्यद्वक्ता थे। होशे अनेक परिप्रेक्ष्यों में यर्मिया की तुलना में रखा जा सकता है, जबकि वह उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व का था। यर्मिया दक्षिणी राज्य का अंतिम भविष्यद्वक्ता था जिसने यहूदा वासियों को बाबुल की बंधुआई में जाते देखा था। होशे ने भी इसराइल को आने वाले दासत्व की चेतावनी दी थी। दोनों ही भविष्यद्वक्ताओं ने दिल तोड़ने वाले व्यक्तिगत अनुभव के साथ संदेश सुनाया। यर्मिया अधिक राष्ट्रव्यापी था और होशे का अनुभव पारिवारिक था। यर्मिया अपने देश से प्रेम करता था और उन्हें कठोर संदेश सुनाने में उसे बहुत दुख होता था। परमेश्वर ने यर्मिया जैसा ही कोमल हृदय का मनुष्य चुना कि यहूदा को अपना संदेश सुनाए। होशे यर्मिया के समान कोमल हृदय का मनुष्य तो नहीं था, परंतु हम देखेंगे कि वह एक टूटे परिवार से आया था और उसका दिल टूटा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया और वह एक वेश्या बन गई। वह उससे इतना अधिक प्रेम करता था कि जाकर उसे घर ले आया, परंतु उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया और वह एक वेश्या बन गई। वह उससे इतना अधिक प्रेम करता था कि जाकर उसे घर ले आया, परंतु वह फिर से वेश्यावृत्ति में लौट गई। ऐसे हृदय विदारक अनुभव के साथ होशे इसराइल के समक्ष आंसुओं के साथ प्रकट हुआ और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को तुमने कैसा दुख पहुंचाया है। मैं भी ऐसे ही दुख का भागी हूं। मेरे परिवार ने मुझे ऐसा ही दुख पहुंचाया है। क्योंकि उसका दिल बहुत दुखी था, वह परमेश्वर के संदेश को गहराई से सुना सकता था। मेरे मित्रों, होशे के पुस्तक के प्रथम तीन अध्याय उसकी पारिवारिक गाथा सुनाते हैं। उसका और उसकी विश्वासघाती पत्नी दोनों की कहानी है। अतः यहाँ उसकी पारिवारिक बदनामी और नगर की अफवाहें हम पढ़ते हैं। आइए हम देखें होशे और गोमेर वेश्या का विवाह। होशे के पुस्तक एक अध्याय और उसके एक पद में लिखा है, यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकियाह के दिनों में और इसराइल के राजा योआस के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकियाह दक्षिणी राज्य यहूदा के राजा थे और योआस का पुत्र यारोबाम उस समय इसराइल में राज्य कर रहा था। तब हम आगे पढ़ते हैं होशे एक अध्याय उसके दो पद में, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने होशे से जो कहा वह विस्मयकारी है। अधिकांश टीकाकार इसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हैं। अंग्रेजी की स्कोफील्ड बाइबल में टिप्पणी है कि परमेश्वर ने होशे को एक अनैतिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी थी, परंतु गोमेर से विवाह करने की उसकी मनोकामना की अनुमति दी थी और उसे चिताया कि वह विश्वासघाती निकलेगी, परंतु उसके दुखद अनुभव को परमेश्वर के साथ इसराइल के संबंध के लिए एक सबक ठहराने का निश्चय किया। मेरे विचार में इस टिप्पणी के द्वारा परमेश्वर उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, वह पूरा उत्तरदायित्व निभाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने होशे से कहा, जाकर अर्थात उसे आज्ञा दी। बचपन में मेरे माता पिता मुझसे कहते थे, जाकर बाजार से यह ले आओ। मैं इसे उनकी आज्ञा समझता था। होशे शायद गोमेर से युवावस्था में मिला था और उसके प्रेम जाल में फंस गया था। इसके बाद वह वेश्यावृत्ति में चली गई। अतः वह उसे भूल जाना चाहता था, क्योंकि उस नगर में वह लज्जा का कारण थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी उसे पत्थरवाह किया जाना था। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह उससे विवाह करे, अर्थात मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करे। आप कहेंगे कि यह तो अनाचार है, परंतु परमेश्वर आज्ञा दे तो नहीं है। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह गोमेर को पत्नी बना ले। वह वेश्यावृत्ति की संतान है। इससे प्रकट होता है कि उसकी पारिवारिक कहानी में विश्वासघात है। मेरे मित्रों, आरंभ ही में परमेश्वर कहता है कि वह होशे के अनुभव को एक दृष्टांत के रूप में काम में लेगा। यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। यहां परमेश्वर वेश्यावृत्ति को आत्मिक विश्वासघात से जोड़ रहा है। जी हां, विश्वासी के साथ भी ऐसा ही होता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में एक आत्मिक वेश्या हैं। परमेश्वर खरी बात करता है और आज प्रचारकों को भी दो टुक बात सुनाना चाहिए। हम प्रायः मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं और इस प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रभाव को निष्फल बना देते हैं। होशे नबी की पुस्तक एक अध्याय उसके 3-5 पद में लिखा है, अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज़राइल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। होशे का विवाह ही नहीं, उसके बच्चे भी इस्राएल के लिए आत्मिक चेतावनी प्रकट करेंगे। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यशायाह के बच्चे भी इस्राएल के लिए आत्मिक संदेश का कारण थे। इज़राइल उसका पुत्र था, जिसका अर्थ है परमेश्वर तीतर बीतर करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा। इज़राइल एक नगर का नाम था। हर्मगिदोन की तराई या एस्ड्रेलान की घाटी, इतिहास में वह एक रक्त रंजित स्थान है और भविष्य में भी वह अंतिम युद्ध का स्थान होगा। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल को तीतर बीतर करेगा। होशे एक अध्याय के 6 पद में लिखा है कि वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, अर्थात जिसने पिता की दया ना देखी हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वह अनाथ नहीं थी, परंतु उसे पता नहीं था कि उसका पिता कौन है। यह होशे के परिवार की लज्जा है। परमेश्वर इस्राएल पर प्रकट करना चाह रहा है कि वे परमेश्वर की दया से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका पिता नहीं होगा। मेरे मित्रों, मनुष्य यदि पाप में इतना अधिक गिर जाए कि परमेश्वर का अनुग्रह उस तक न पहुंचे, परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से बचा ना पाए। तथापि यह संभव है कि आप पाप में गिरते गिरते उस गहराई तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और दया का इनकार करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप उस सीमा को पार कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको पकड़ ना पाए। मेरी कलीसिया में एक सदस्य चाहती थी कि मैं उसके पति से भेंट करूं, क्योंकि वह बीमार था और मरने पर था। वह चाहती थी कि मैं उसे सुसमाचार सुनाऊं। मैंने उसे सुसमाचार सुनाया। वह एक विनम्र व्यक्ति था और उसने मेरी बात सुनी। उसने कहा कि वह निश्चय ही प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता है, परंतु उसने पूरा जीवन परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है। 25 बार वह वेदी पर गया और उससे वाचा बांधने के बाद फिर वापस लौट गया, अर्थात वह उन्हीं कार्यों को करता रहा जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अतः उसने कहा कि वह इस समय भी निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि वह वास्तव में सच कह रहा है। मैंने उसके अंतिम संस्कार में उसके पार्थिव देह को देखकर मन में सोचा, हे परमेश्वर, काश वह सच कह रहा था। उसने जो मुझसे कहा था वह सच था। मैं आशा करता हूं कि तेरा अनुग्रह उसका स्पर्श कर चुका है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ बहुत समय खिलवाड़ कर सकते हैं। इसराइल ने ऐसा ही किया था और एक दिन परमेश्वर ने कहा, मैं अब तुझ पर दया नहीं दिखाऊंगा। होशे की पुस्तक एक अध्याय के 7 पद में लिखा है, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि वह यहूदा के घराने को दंड देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह इसराइल को दंड देगा और यहूदा को नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद के कारण वह सुलेमान के राज्य में इसराइल का विभाजन नहीं होने देगा। उसने बार बार कहा था कि वह दाऊद के कारण दक्षिणी राज्य को बचा कर रखेगा। कोई कहेगा कि यह तो पक्षपात है, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे दया दिखाई और मेरे साथ धीरज रखा, और वह आज भी ऐसा ही करता है। लिखा है, उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं युद्ध विमानों और परमाणु बम के द्वारा उनका उद्धार नहीं करूंगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय और यशाया की पुस्तक 37 अध्याय में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे चमत्कारी रूप से बचाया था, परंतु उसने उत्तरी राज्य को नहीं बचाया। होशे की पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस देश में बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए 2-3 वर्ष लगते थे। लोरुहामा का दूध छुड़ाने पर गोमेर एक और पुत्र को जन्म देती है। होशे 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लुआम्मी रख, क्योंकि लोग मेरी प्रजा नहीं हो और ना मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। लुआमी का अर्थ है मेरे लोग नहीं। यदि इसे एक वचन में रखकर पढ़ें तो इसका अर्थ है मेरी संतान नहीं। परमेश्वर इसराइल से कहता है, तुम मेरे लोग नहीं और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियो, यदि बाइबल में मात्र यही एक पद हो तो मैं मान लूंगा कि परमेश्वर ने इसराइल से नाता तोड़ दिया है। प्रभु राज में विश्वास न करने वालों को मैं सुझाव देता हूं कि वे यदा कदा एक बाइबल पद निकालकर यह न कहें कि वह वचन पूरा हो गया है। अगला पद स्पष्ट करता है, आइए पढ़ें होशे 1 उसका 10। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है, और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लिखा है, तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालों की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है, और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहूदी बार बार नष्ट किए गए। हिटलर के प्रकोप के बारे में सोचें, परंतु यह एक अति अद्भुत भविष्यवाणी है कि परमेश्वर उन्हें असंख्य बना देगा। जिस दिन यह भविष्यवाणी पूरी होगी कि जिस स्थान पर उन्हें कहा गया था कि वे परमेश्वर की प्रजा नहीं, उसी स्थान पर उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उस दिन उनमें परमेश्वर की ओर मन फिराने का महान समय होगा। परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है। परमेश्वर का संपूर्ण वचन पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं जो इस अध्याय का अंतिम पद है। होशे एक अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तब यहूदी और इसराइली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहरा कर देश में चले आएंगे, क्योंकि इसराइल एक दिन प्रसिद्ध होगा। लिखा है, तब यहूदी और इसराइली दोनों इकट्ठे हो। उस समय संपूर्ण इसराइल जाति संगठित हो जाएगी, तब इसराइल के 10 गोत्र खोए हुए नहीं रहेंगे। अपना एक प्रधान ठहरा कर, आज की दशा उनकी ऐसी नहीं है। वे सब अपने अगुआ के विषय एक मत नहीं है। यहाँ एक प्रधान से अभिप्राय है प्रभु यीशु। लिखा है, देश से चले आएंगे। मैं उस विचार से सहमत नहीं कि आज का संगठित इसराइल पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्ति है। होशे की पुस्तक में हम आगे चलकर इस पर सविस्तार विचार करेंगे। जी हाँ, तब हम जानेंगे कि परमेश्वर की भविष्यवाणी अपने समय में ही पूरी होती है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में होशे की पुस्तक से आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में आप अवश्य बैठें, क्योंकि हम इसके विशेष अध्ययन को करने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे, बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है मुझे कुछ न दे सकेगा।